Sri Ramanujacharya appeared in 1017 AD near Madras, South India, in a family of Vedic scholars. Sri Vaishnav says he was an incarnation of Lakshman. The word Ramanuj means a follower of Ram. He received this name because Lakshman always follows and serves his brother Lord Ramchandra. A boy of amazing wit, Ramanuj quickly learned Sanskrit, logic and the Vedas. He took Diksha and married at age of 16. देखो के रामानुज जो हैं वो 16 साल की अवस्था में उन्होंने विवाह किया तो पत्नी कितनी साल की होगी वो भी कि 10-12 साल की होगी वैदिक कल्चर में ऐसा ही बताया गया है कन्या जब वो स्त्री बन जाती है तो उसका दान पुण्य देने वाला नहीं है कन्या दान कहते हैं हमारे यहां कन्या का दान होता है लेकिन ये अंग्रेजी याद घुसने थे इन विदेशियों ने हमारे इस वैदिक कल्चर को बर्बाद कर दिया प्रभुपाद बताते हैं कि उनकी सिस्टर की जब शादी हुई वो शायद 9 वर्ष की थी है? और हमारे शरीर से जो माता थी जब उनका विवाह हुआ तो 12 वर्ष की थी यही ठीक था जब वो स्त्री बन जाती है तो फिर वो उसका ना दान का कोई पुण्य है ना वो फिर गृहस्थ जीवन अच्छा चलता है तो श्रील रामानुजाचार्य 16 साल की अवस्था में ही तो उनकी पत्नी 12 साल की होगी 10 साल की होगी क्योंकि 7-8 साल का डिफरेंस पति पत्नी का होता है तो रामानुज स्टडीड विद ए मायावादी गुरु यादव प्रकाश टू मास्टर मायावादी फिलॉसफी एंड टू फीड इट रामानुजाचार्य का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या रहा कि मायावाद फिलॉसफी को इन्होंने डिफीट किया तो एक यादव प्रकाश के साथ इन्होंने सब कुछ सीखा मायावाद के बारे में ये मायावाद जो है बड़ा प्रेवलेंट है भारत में अभी भी बहुत ज्यादा है तो महाप्रभु ने कहा है कि मायावादी कृष्णेरे अपराधी जो मायावादी उनको मायावादी क्यों कहा है जैसे मेरा शरीर है माया का बना हुआ इसका नाश हो जाएगा मेरे ख्याल में आप सबका शरीर भी माया का ही बना है नहीं किस चीज का माया इन नश्वर है इसका नाश हो जाएगा लेकिन भगवान जब प्रकट होते हैं उनका शरीर माया का नहीं होता भगवान ने यह बताया ना जन्म कर्मच में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति अर्जुन अर्जुन मेरा जन्म और जो कर्म है यह दिव्य है अलौकिक है हमारी तरह नहीं है लेकिन मायावादी भगवान को भी अपनी तरह समझते हैं इसलिए ये बहुत बीमार है बेचारे इनको कहा कि मायावादी कृष्णेरे अपराधी मायावादी कृष्ण के चरण में बड़ा अपराध करते हैं और महाप्रभु ने तो वार्न किया हमको मायावादी भाष्य सुनी लय हॉय सर्वनाश जो मायावादियों की व्याख्या सुनता है ही इज डूम्ड उसका सर्वनाश हो जाता है तो हम सब मायावादी और रामानुजाचार्य ने बहुत बड़ा कार्य किया इस विषय में यादव प्रकाश के साथ रह करके सारे मायावाद फिलॉसफी स्टडी की और फिर उनको डिफीट किया तो मायावादियों में बड़ी बीमारियां हैं उनको अहंकार बड़ा जल्दी आ जाता है अभी एक वृंदावन में प्रोग्राम था हम भी इनवाइटेड थे उसमें वृंदावन प्रोग्राम में हम भी इनवाइटेड थे तो एक हम पर नाम की महिमा के बारे में बताना था वो फोगल आश्रम में तो बता रहे थे हम नाम के बारे में कहते नाम बड़े जोर जोर से चलाना ये एयर पोल्यूशन है मायावादी बोला क्या कैसा दुष्ट है एयर पोल्यूशन है या एयर का सोल्यूशन है तो बाकी बड़ी सब लोगों ने बड़ी निंदा की उसकी, पागल बोलने लगा ऐसे। तो मायावादी ऐसे अपराधी बड़े हैं, इनको ज्ञान का बड़ा अपराध है। एक मायावादी थे इधर प्रकाशानंद महाप्रभु के समय में, वो महाप्रभु को गाली निकालते थे। जब महाप्रभु की कृपा सर्वभौम भट्टाचार्य जो थे वे भी मायावादियों को पढ़ाते थे, बड़े विद्वान थे, राजा के गुरु थे। तो लेकिन महाप्रभु की कृपा हुई, वो वैष्णव बन गए, भक्त बन गए। तो जब प्रकाशानंद को पता लगा कि सर्वभौम भट्टाचार्य वैष्णव बन गए, तो प्रकाशानंद ने क्या कहा कि ये जो चैतन्य है ये इंद्रजाली है। इंद्रजाली का जो जादू टूना करते हैं, महाराष्ट्र में जादू टूना चाहता कुछ नहीं है, है यहां भी? ये कहता हाँ, ये कहता नहीं, वो कहता नहीं, कह रहा भद्रराज के पीछे जो बैठा हुआ कहता नहीं। तो महाप्रभु को यहां तक एक गाली देना, किसी को माया एक कहना जादू टूना करता है। तो प्रकाशानंद कहता था कि चैतन्य का जादू उस पर चल गया सर्वभौम भट्टाचार्य पर, अगर वो इधर आएगा वाराणसी में, उसकी भाव काली यहां बिकने वाली नहीं है, उसका भाव का यहां नहीं चलेगा। तो एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे, पता नहीं कहां निगड़ी के थे या कहां के थे, बड़े भक्त थे महाप्रभु के उस समय, निगड़ी के नहीं होंगे तो बिगड़ी के होंगे कहीं के। क्या क्या नाम, निगड़ी, बिगड़ी, तिगड़ी, चगड़ी। निगड़ी का मतलब क्या है महाराष्ट्र में? कोई मतलब ही नहीं। तो महाराष्ट्र ब्राह्मण और चंद्रशेखराचार्य, ये बड़ी निंदा करते थे भगवान के बेचारे, दोनों बड़े दुखी होते थे, महाप्रभु के भक्त थे। तो महाराष्ट्र ब्राह्मण ने कहा कि जब महाप्रभु आए, कहते प्रकाशानंद ऐसा कहता, प्रभु हमसे आपकी निंदा नहीं सहन होती, प्रकाशानंद इन मायावादियों पर भी कृपा करो। ये प्रकाशानंद कहता कि चैतन्य की भाव काली यहां नहीं बिकेगी। तो गौर भगवान क्या कहते हैं, अगर मेरी भाव काली यहां नहीं बिकेगी तो बोझ उठा के वापस ले जाऊंगा, उल्टे सुलटे भाव में यहीं बेच कर जाऊंगा मैं। तो महाराष्ट्र ब्राह्मण समझ गए कि मायावादियों का भी कल्याण हो जाएगा। तो जब भगवान वृंदावन से वापस जा रहे थे, तो महाराष्ट्र ब्राह्मण ने गोष्ठी रख दी प्रकाशानंद के साथ। प्रकाशानंद के 10,000 दंडीधारी, दंड ये ज्ञान मार्ग किसको देते हैं मायावादी, केवल ब्राह्मण। कलयुग में जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है, कर्म से। तो ब्राह्मणों को, बाकियों को दक्षिणा दे देंगे, दंड नहीं उसको मिलती, दंडी एक दंडी, हमें त्रिदंडी। तो अभी ये अपना प्रकाशानंद जो है गोष्ठी रखती, तो भगवान का और भगवान आए। देखो भगवान कैसे हमारे भक्त की, परफेक्ट भक्त की भूमिका, पूर्ण भक्त आए जाओ तो पहले सारे मायावादियों को प्रणाम किया। उसके बाद अपने चरण धोए भगवान ने, वहीं गंदी जगह बैठ गए। तो प्रकाशानंद ने, भगवान तो तेज के पुंज थे, तो प्रकाशानंद कहता है, प्रकाशन आया, उठ के आया, श्रीपाद अब यहां क्यों बैठे, आइए हमारे साथ बैठिए। भगवान कहते नहीं, मैं नीच संप्रदाय का सन्यासी हूं और मैं यही ठीक हूं। तो फिर प्रकाशानंद कहता है कि आप हमारी संप्रदाय के सन्यासी हैं, 10 नाम है सन्यासियों में, उसमें एक भारतीय नाम भी है, भारतीयों को नीचा समझा जाता है, जैसे सरस्वती और कुछ ऐसे नाम है उनको ऊंचा समझा जाता है। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे संप्रदाय के सन्यासी हैं, लेकिन आप ये कि आप भावुकों की तरह नाचते हैं, आप हमारा संग नहीं करते, आपको वेदांत पढ़ना चाहिए। तो महाप्रभु ने एक बात कही यहां पर, महाप्रभु ने कहा कि गुरु मोरा मूर्ख देखी करीला शासन, मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख देखा और मेरे पर शासन किया। क्या महाप्रभु मूर्ख थे? मूर्ख कौन था? मायावादी मूर्ख थे सारे। लेकिन देखो वैष्णवों को परिचय का भी कैसे भगवान से सीखना चाहिए। भगवान अपने आप को ही मूर्ख कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने देखा तुम तो मूर्ख है, बोला तू ये वेदांत क्या पढ़ेगा, तू जो है ये हरे कृष्ण का कीर्तन कर। बस ये मैं कीर्तन करने लगा, कीर्तन करते करते कभी मेरी आंखों में आंसू आ जाए, कभी मेरे रोंगटे खड़े हो जाए, कहीं मैं जमीन पर लोटपोट हूं, तो मैंने गुरुजी से पूछा जाकर, मैंने कहा गुरुदेव ये कैसा मंत्र दिया आपने। गुरुजी कहते क्यों बेटा, कि मंत्र में जब तक कभी मैं रोता हूँ, कभी लोटपोट होता हूँ, कभी मेरे बाल खड़े हो जाते हैं शरीर में, सात्विक अष्ट सात्विक भाव। तो मेरे गुरुजी हंसने लगे, कहते हैं बेटा, कहते ये मंत्र कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया, भगवान कहते हैं। तो कहते मेरे गुरुजी कहते हैं बेटा तू पागल नहीं होगा, तेरा मंत्र सिद्ध हो गया है, अभी मैं यही मंत्र जपता हूँ। तो मायावादियों को शिक्षा दी भगवान ने, तो फिर शास्त्रार्थ हुआ, बातचीत हुई, तो भगवान ने कहा कि जो भगवान वेद व्यास ने वेदांत का भाष्य जो दिया है वो ठीक है, लेकिन शंकराचार्य ने वेदांत के भाष्य में वेदांत का जो असली भाष्य है उसको गौण रखे, उसका असली जो अर्थ है गौण रखे, अपना काल्पनिक अर्थ दे दिया है। जब ये कहा तो प्रकाशानंद पर कुठारा घात हो गया, और प्रकाश बड़ी भी वार्ता हुई, प्रकाशानंद भी भक्त बन गया भगवान का। एक समस्या हुई प्रकाशानंद को कि अभी वो नाचता है, लोग क्या कहेंगे सन्यासी नाच रहा है, ये प्रकाशानंद है। तो महाप्रभु ने प्रकाशानंद और उसके 10,000 शिष्यों पर कृपा की, जो भगवान की आलोचना करते थे वो भगवान के अनुयायी बन गए। तो कैसे बनाया भगवान ने, विनम्रता से। हमें भी विनम्रता लानी है, हमें विनम्रता नहीं है, हम डंडा मार काम करते हैं, है? भगवान ने पहले प्रणाम किया, मैं बड़ा मूर्ख हूँ, और मूर्ख तो वो था प्रकाशानंद, बड़ा उस समय का वो बड़ा प्रकंड विद्वान था अपने समय में, लेकिन प्रकाशानंद भी भक्त बन गया, ये भगवान की कृपा थी। तो मायावादियों को सीधा किया शिलाराम अनुजाचार्य ने, मायावाद बहुत फैल चुका था भारत में, बहुत ज्यादा इसका हो गया था। When the brilliant Ramanuja kept refuting his Mayavadi arguments, Yadav Prakash tried to murder him. देखो मायावादी कितने बदमाश होते हैं, वो भगवान का मर्डर करवाना चाहते थे, कैसे दुष्ट हैं। यादव प्रकाश ने मर्डर करने का प्रयास किया, है? यादव प्रकाश ट्राई टू मर्डर हिम, अनसक्सेसफुल यादव प्रकाश एक्सपेल्ड रामानुजा फ्रॉम द आश्रम, निकाल दिया आश्रम से। बिफोर लीविंग रामानुजा कंप्लीटली डिफीटेड हिज गुरुज थ्योरी ऑफ वननेस एंड नो डिस्टिंक्शन। बोलो श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की। रामानुजा एक्सप्लेन व्हाई ए सर्टन यूनिटी कैन बी सीन इन द इंटर relatedness of all things, still everything within the universe has its own distinct reality. Pearls strung on a thread shares unity collectively. They form an organic whole, a necklace. Still, each individual pearl has its own unique qualities. While spirit, matter and God may be seen as one organic whole, each has its unique qualities. Therefore, Shankara's principle of absolute oneness can't stand. Rather, the principle of unity characterized by different qualities must be accepted. Sometimes later, Yadaprakash met Kuresh, Ramanuj's student, with a photographic memory. Kuresh ki photographic memory thi, jaise mara Radhishyam ki hai. Radhishyam ki photographic memory hai. Radhishyam to abhi naye mandir mein hai na, wahin se mari katha sun raha hai wo. Nahi, yahan aa gaya udhar. You have photographic memory? So, quoting Shrutis, the best of Vedic proof, Kuresh convinced him that Brahma has transcendental form and qualities coming from the ultimate reality, the supreme absolute truth, known as Lord Narayan. Ramanuj initiated anyone regardless of caste. देखो, ये भी एक रामानुजाचार्य का बहुत बड़ा contribution रहा. हमारे भारत में casteism बहुत आ गया, खास करके South India में बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. ये मंदिर कहाँ पर है? कौन सा मंदिर वो? उड़पी. उड़पी में तो South में है ना, तमिलनाडु में है? उड़पी कर्नाटका में. हाँ, वहाँ के तमिलनाडु कर्नाटका ऐसा ब्राह्मण एक ही जैसे हैं. तो वहां पर उड़पी कृष्ण जो है उनकी बड़ी लीला है. तो एक कनकदास थे. कनकदास जो थे वो शूद्र थे बेचारे. तो मंदिर में दर्शन करने जाने लगा तो ब्राह्मण ने पूछा, एक शूद्र एंगे पोकट कुड़िया सापड़ते ला. तामिल कुछ कुछ तरिया, तामिल थोड़ा थोड़ा आता है हमको. निकाल दिया कनकदास को अंदर. बेचारे नहीं जाने. कनकदास बेचारे मंदिर के पीछे गए और पीछे बैठ के रोने लगे. शूद्र थे पर शुद्ध भक्त थे भगवान के. और रोने लगे, हे कृष्ण मैं आपके दर्शन नहीं कर सकता. तो भगवान तो भाव और प्रेम के भूखे हैं. भगवान कहते हैं, अरे इधर से पकड़े. क्या है, कोई अच्छा मृदंग बजाने वाला नहीं है इधर? भगवान क्या कहते हैं? भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सा. भाव का फास्ट भूखा हूं मैं और भाव जी बस एक सा. सारे बोलो भाव से जो मुझे भजे तो भाव से तेरा पास. भाव से बस एक सा. भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं. भाव करती है लाचार तेरे मुझको. भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक था.
भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की बस एक सा अन्न धन अल वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए आप हो जावे मेरा बस पूरन यह सत्कार भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सा भाव सब कुछ भी दे दे मैं तो लेता नहीं भाव बिन सब कुछ भी दे डाले तो मैं लेता नहीं भाव से एक फूल भी दे तो मुझे है सभी का भाव का भूखा भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं भाव पूरित तेरे ही करती है मुझे ये भगवान के शब्द हैं भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं मुझ पर है भार बात का भर पूर मुझ पर है भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की बस एक का मुझी में भाव रख कर लेते हैं मेरी शरण उनके और मेरे हृदय में एक रहता रहता एक का आखिर में भगवान क्या कहते हैं बांध लेते हैं मुझे यो भक्त दृढ़ जंजीर में बांध लेते इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार इसीलिए भूमि पर होता मेरा
कनकदास, कनकदास जो है वो भाव की बात चल रही थी, मैं थोड़ा इधर आ गया फिर से। कनकदास रो रहे थे बेचारे कि प्रभु मैं आपके दर्शन नहीं। देखो जो विकरा है ना, ये इसमें भगवान में कोई भेद नहीं है, भेद है हमारे मलिन मन में, मन गंदा है ना, पर भगवान और भगवान की मूर्ति सेम है। रोने लगे तो शुद्ध भक्त थे, इसलिए कनकदास जी की कृपा से ही मैंने आपको ये भजन सुनाया। तो भगवान ने क्या किया, वो जो मंदिर है उडुपी मंदिर, उसके पीछे खिड़की थी, भगवान ने क्या किया, वो पीछे दीवार गिराई, मंदिर की दीवार को गिरा दिया और खिड़की की तरफ मुंह किया और कनकदास जी को बाहर बैठे दर्शन दिए भगवान ने। भगवान ने कनकदास जी को दर्शन दिए। आज भी उडुपी कृष्णा के दर्शन खिड़की से ही है, तभी से। तो ये हमारे ब्राह्मण लोग गड़बड़ी बहुत करते हैं, खास करके जो साउथ इंडियन ब्राह्मण बड़ी गड़बड़ी करते हैं, बड़े कट्टरवादी। कलयुग में नहीं कट्टरवाद चले ना, लेकिन चिंता नहीं करो, प्रभुपाद कृपा, प्रभुपाद आ चुके हैं जिन्होंने शास्त्र के आधार पर ये सारे भेदभाव खत्म कर दिए। देखो कहा है, जात पात पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। जो भगवान का भजन करते उसकी कोई जात पात नहीं है। वैष्णव मेरा जाति बुद्धि, वैष्णव की जात देखना ये, और मूर्ति को एक शिला समझना, और क्या है, और क्या है, हाँ, गुरु को एक साधारण व्यक्ति समझना। तो ये सब दिव्य है। तो हम लोग ऐसे कलयुग के बेकार हो चुके हैं, लेकिन हमारे ग्रंथ हमको बता रहे हैं और प्रभुपाद आ चुके हैं हमें समझाने के लिए। सब लोग प्रभुपाद के चरणों को पकड़ लो और इनकी शिक्षाओं पर चलो, इनकी पुस्तकों का वितरण करो, हरि नाम करो बस। देखो हमारे पास भी ब्राह्मण है उधर कश्मीर में, कश्मीर में ब्राह्मण कैसे हैं बेचारे, आपको पता मुसलमान जो है हलाल मांस खाते हैं। हलाल का मतलब समझते हो नहीं आप, जब तक पशु को तड़फाया नहीं जाता उस पर छुरी चलाते हैं, तड़पता है वो बेचारा, छुरी चलाई अल्लाह रहमान, उस छुरी चलाते हैं, कलमे पढ़ते हैं, कुछ तड़प तड़प कर जीव को मारते हैं उसको, वो हलाल हो। अभी हम एक शेख, शेख होते हैं राजा, मुसलमान राजा, हम दुबई में थे तो एक शेख के पास, हमको शेख के पास वो काम करता हूँ ले आया, ले गया, कहता मेरे को बड़ी कोशिश की इन्होंने मुसलमान बनाने की, मैंने कहा नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो ले गए तो मैलू में रहने, अभी बोला कश्मीर में आओ हमारे पास, कहते तो हलाल हलाल मिलेगा नहीं। मैंने कहा हमारे पंडित भी वहाँ हलाल खाते हैं, तुम्हें हलाल क्या होनी, हराम मिलेगा तेरे को, क्या मिलेगा वहाँ, हमारे पास पंडित हैं कश्मीर में, वही हलाल मांस कौन खाता है, मुसलमान, वही हलाल मांस पंडित खाता है, वो अपने आप को पंडित कहता है। तो पंडित है बोलो, वो तो कहते हैं बहुत बड़े पंडित हैं, आप कैसे कहते हो नहीं है, वो कहते हैं बहुत बड़े पंडित हैं। ऐसे पंडित कलयुग में हैं। तो कलयुग में जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है, कलयुग में कर्म प्रधान विषव करी राखा, जो जस करे सो तस फल जाता। कलयुग में जन्मना जायते शूद्र, संस्कार द्योतमा, वेद पाठी भवेद विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। सब जन्म से सब शूद्र हैं, संस्कार से वो उत्तम बन सकते, संस्कार द्योतमा, वेद पाठी भवेद विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। तो कलयुग में खास करके साउथ इंडियन ब्राह्मणों ने बड़ी गड़बड़ की, खास करके तमिलनाडु वालों ने, लेकिन प्रभुपाद कृपा से तमिलनाडु के ब्राह्मण भी आ रहे हैं अभी हमारे साथ, वो भी हरे कृष्ण भक्त बन रहे हैं, ऐसा प्रभुपाद कृपा है। तो हम लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है, बड़ी जरूरी बात है ये। तो कनकदास की बात मैंने सुनाई आपको, कनकदास जो थे भगवान ने उनको दर्शन दिए, दरवाजा दीवार पिछली तोड़ दी, पीछे बैठे थे बेचारे वो, और खिड़की से भगवान ने मुंह कर लिया, भगवान ने खिड़की की तरफ और वहां दर्शन दिए उनको। तो हम लोगों को ये बातें समझनी है कि भगवान भाव से मिलते हैं और भाव सबके अंदर है, उसको जागृत करना है। रामानुज इनिशिएटेड एनीवन रिगार्डलेस ऑफ कैस्ट यूजिंग द पंच संस्कार प्योरिफिकेशन मेथड, ही टर्न शूद्रस इनटू ब्राह्मण्स, ही एस्टेब्लिश्ड दैट द पोजीशन ऑफ ए वैष्णव सरपासेस ऑल सोशल लिमिटेशंस। बिल्कुल हमारी फिलॉसफी एंड कंसिडरेशंस, आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ एज ए सर्वेंट, रामानुज टॉट द वर्शिप ऑफ द वैष्णवास। Several times, envious Brahmins tried to poison Ramanuj. देखो, रामानुज जी को जहर देने का प्रयास किया गया। To teach detachment to one disciple, Ramanuja struck the following demonstration. He told the disciple to create confusion among the sannyasis by switching their clothes at the bathing ghat. When the sannyasis who were big scholars and renunciates started wearing each other's clothes, a big argument began. The disciple could plainly see that the renunciates were attached to some cloth. Then Ramanuja sent the disciple to the home of his grihastha disciple, Dhanurdas. Ramanuja engaged Dhanurdas in the temple to ensure he would not be home. Following Ramanuja's order, the disciple begins stealing jewelry from the Dhanurdas' chaste wife, who was sleeping. After the disciple took the ornaments from the side of her body, she suddenly turned over. The startled disciple fled through the window, but he waited outside to witness the reaction of Dhanurdas. Upon returning home, Dhanurdas talked with his wife. "I am worried that the temple needs money," said his wife. "What makes you think that?" asked Dhanurdas. "Because while I was slept, one of the temple devotees came through the window and began stealing the jewelry from my body. To go that far, I think those poor saints must desperately need money. What did you do while he was stealing your jewelry?" I turned over, but he fled through the window. Why did you do that? Said Dhanurdas. अभी देखो वाइफ कितनी महान थी, जब ज्वेलरी चला रहा है बंदर का भक्त तो उसने बोला यदि एक तरफ से ले ली तो दूसरी तरफ से भी ले लो। शिटन द साइड तो सोचा उठ गई तो भागा बेचारा, विंडो से उसने छलांग लगा दी। देखो वैष्णव कैसे होते हैं। तो आई डिडंट मीन टू स्केयर हिम, आई ओनली टर्न ओवर सो दैट he could take the jewelry from the other side of my body as well. Dhanurdas rebuked his wife, if you were not so affected by false ego, you would have given him all your jewels. Now, what shall we do? We have failed miserably. Yeah, kaise the Dhanurdas. His wife lamented, you are right. It is only my pride that kept me from surrendering everything. How will we ever make any advancement? Dekho Vaishnav kaise hote hain. Watching all this, Ramanuja's disciple was astonished at the humility and surrender of these Grihastha devotees. Ramanuja explained the meaning of these two events. The sannyasi's clothes and the wife's jewels. The sannyasis were so attached to some ragged bits of cloth that they fought over it. But the grihasthas were detached even from costly jewels if they were needed for the Lord's service. Jaho. Ramanuja founded the Shri Sampradaya, one of the four major Vaishnava Sampradayas. Brahma, Shri, Kumar, Rudra. Hamari ya Brahma, Shri Sampradaya, Kumar or Rudra. Char Sampradaya. This Sampradaya propounds the Vedanta philosophy of Vasishtadvait Bad, qualified monism. Gaudiya and Shri Vaishnava share many teachings and practices. The Gaudiya took Ramanuja's explanation of God and the Jiva verbatim. The principle of God is like a blazing fire, while the living soul or the Jiva is like a spark, a small part of God. Both accept three classes of Jivas: eternally liberated, forever bound, free by devotion and sadhana. Ramanuja taught serving master and servant. Ramanuja taught serving God in Vaikuntha with awe and reverence, in dasya rasa, mood of master and servant. Gaudiya Vaishnavas teach confidential service in madhurya rasa to Radha Madhava within the groups of Vrindavan. Ramanujacharya wrote many famous commentaries on the Upanishads, Puranas, Bhagavad Gita, Sri Bhashya. His commentary on Vedanta presents a formidable challenge to Shankaracharya's impersonal commentary. To this day, the Sri Vaishnava disciples' succession from Ramanuja continues to uphold the traditions of deity worship and philosophy summarized by the founder. His samadhi is in a Shri Rangam. Bolo Shri Ramanuja Charya Ji Maharaj ki. To mere pyare Hari Bhakto Matao, Ramanuja Charya bade mahan the aur mayavadiyon ka unhone udharan diya. Ek Vaishnav Grihasthavi jo hai टोटली डिटैच है और ये मायावादी फटे हुए कपड़ों के लिए लड़ रहे हैं आपस के लिए। धनुर्दास कितना महान था, उनकी पत्नी कितनी महान थी। तो हमें वैष्णव बनना और वैष्णव धर्म का प्रचार करना है। एक बात मुझे प्रभुपाद की याद आई, याद रखो इस बात को। प्रभुपाद कहते थे इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दैट द होल वर्ल्ड कैन बिकम डिवोटी। यह असंभव है कि पूरी दुनिया भक्त बनेगी। प्रभुपाद कहते हैं अगर कुछ लोग भी भक्त बन गए ना तब वर्ल्ड कैन बी सेव्ड। तो भक्त बनना है, भक्त कैसे, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति रहित। भगवान कह रहे हैं। और शिल रूप गोस्वामी प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, अन्ना विलासता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलना कृष्णानु शीलम भक्ति उत्तम। ये शिल रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने कहा। तो एक रामानुज की बात प्रभुपाद से सुनी थी मैंने। रामानुज बड़े महान, तो अपने गुरु के पास जब गए दीक्षा लेने के लिए तो गुरु जी ने इनको राम मंत्र दिया, कहा बेटा ये मंत्र गुप्त है। क्या गुरु जी इस मंत्र के जपने से क्या होगा, कि तुम्हें राम जी की प्राप्ति होगी, मोक्ष मिलेगा। मंत्र तो रामानुजाचार्य जो है वो गए छत के ऊपर चढ़कर जोर जोर से मंत्र चिल्लाने लगे, सबको बताने लगे इस मंत्र को जपो सबकी मुक्ति हो जाएगी। तो गुरु जी को पता लगा, गुरु ने बुलाया, बेटा तेरे को मैंने बोला था मंत्र गुप्त है। कहते गुरु जी मेरे से गलती हुई, मैंने अपराध किया, लेकिन लोगों का उद्धार होगा। गुरु जी ने गले लगा लिया, कहते तू मेरा असली शिष्य है जो दूसरों का भला सोचने वाला। तो वैष्णव अपना नहीं सोचते, दूसरों का भला सोचते हैं। तो रामानुजाचार्य बहुत बड़े वैष्णव थे और हमारी गौड़ी संप्रदाय से बहुत सारी बातें मिलती हैं। हमने वैष्णव बनना है, वैष्णव बनने से ही हमारा जीवन धन्य होगा, और किसी तरीके से हमारा जीवन धन्य नहीं हो सकता। मायावाद का बड़ा प्रचार हो गया भारत में, ज्ञान मार्गी बहुत बढ़ गए, जगह जगह उन्होंने मठ मला लिए हैं। और ये मायावादी प्राय जो है ना, ये बेचारे औरतों के शिकार बन जाते हैं। मायावादी एक बहुत बड़ा मायावादी ज्ञान मार्गी, और पहले शंकराचार्य के पद पर रह चुका था, लेकिन फिर उसने अच्छा किया कि शंकराचार्य का पद छोड़ दिया। बहुत बड़ा ज्ञानी और प्रवचन देता है बहुत बड़े, कहते मैं ध्यान में हूं या ध्यान में जा रहा हूं। किसका ध्यान कर रहा है, ध्यान में या ट्रांस में है यार। तो प्रिय बंधुओं को माता हो, ज्ञान मार्गियों का बड़ा फैल गए हैं, बहुत फैल गए हैं। तो ये जो ज्ञान मार्ग की जिसकी बात बता रहा था, शंकराचार्य का पात्र छोड़ दिया, ये राजस्थान में गया तो एक बालिका जो बड़ी रूपवती थी, कहते महाराज मैं आश्रम में चल रहूंगी। अच्छे भाव से बेचारी आ गई, हरिद्वार में इनका आश्रम है। हरिद्वार आ गई तो ये बेचारी बालिका गर्भवती हो गई, किससे, इन महान मायावादी से। अब ये घबरा गया भाई कि अभी क्या होगा ये। तो फिर अपना जो उसका मैनेजर था उसके आश्रम का, उसको 10,000 रुपया दिया कि तू इससे शादी कर ले। तो ये है, अगर हम भक्त बनेंगे तो महाप्रभु की क्या, कृष्ण भगवान की क्या शिक्षा है भगवत गीता में। भगवान कहते हैं महात्मनस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो गत्वा भूतादिमभ्यम। महात्मा सबने बनना, महात्मा भक्त बनना है, वैष्णव बनना है। अगर हम वैष्णव बन गए तो क्या होगा, हम देवी प्रकृति। देवी प्रकृति कौन है, राधा रानी। हम राधा जी के अधीन हो जाएंगे तो राधा रानी जी हमारी भक्ति की लता की रक्षा करेंगे। अब ये माया के अधीन है, माया हमको दंडित क्यों करती है, क्योंकि हम अपराधी हैं भगवान के चरण में। माया थोड़ी सी गलती तो पकड़ लेती है ना जीव को, तो हम भगवान के चरणों में अपराधी हैं, इसलिए भगवान की माया हमको दंडित करती है। लेकिन प्रभुपाद कृपा से हम सबने महात्मा बनना है, वैष्णव बनना है। वैष्णव जो है, महात्मा जो है, वह ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। क्यों, ब्राह्मण का गुरु वैष्णव है। हमने वैष्णव बनना है, वैष्णव धर्म का प्रचार करना है, और अगर कुछ भी लोग वैष्णव बन गए तो दुनिया बच जाएगी, भगवान वैष्णवों की रक्षा करते हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन की रक्षा की ना, अर्जुन वैष्णव है और लड़ना नहीं चाहते युद्ध। अर्जुन युद्ध नहीं करना था, क्यों? कहते खून खराबा होगा। लेकिन भगवान बता रहे क्यों, दुष्टों का दमन करना ये एक भक्त का भी कर्तव्य है। भगवान ने फिर अर्जुन ने युद्ध किया और भगवान ने गीता का परम गोपनीय ज्ञान अर्जुन के माध्यम से हम सबको दिया। भगवान ने कहा कि भक्तों सी सखा चेती रहस्य मिदमुत्तमम, तुम्हारे भक्त और सखा हो इसलिए गीता का परम गोपनीय रहस्य तुम्हें दे रहा हूं। इसलिए वैष्णव धर्म का प्रचार करो। और ये महाप्रभु का आंदोलन क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं, महाप्रभु के लीला की घटना। फिर दक्षिण भारतीयों की बात आ रही है, महाभारत अपना महाभारत कहा या बीच में महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे तो स्मार्थ, आप यू आर आल्सो स्मार्थ ना, यस कौन, यू आर शेवाइट, नो यू आर नॉट वैष्णव, यू आर मोर देन वैष्णव, व्हाट टू स्पीक ऑफ वैष्णव, यू आर मोर देन वैष्णव। तो स्मार्थ चार पांच स्मार्थ हंस रहे हंस रहे हैं तो गौर भगवान उनके पास पहुंचे, भाई क्यों हंस रहे हो तुम लोग, हे देखो एक ब्राह्मण है अनपढ़ है ये और गीता ऐसे पकड़ी है जैसे पढ़ रहा है, पढ़ना तो उसको आता नहीं। तो उनकी हंसी में क्या झलक रहा था, अहंकार। उनको उन स्मार्ट ब्राह्मणों को सारी विद्या कंठस्थ थी, विद्या नहीं गीता कंठस्थ थी, बड़े विद्वान थे वो। तो हंस रहे हैं अनपढ़ क्या हंसी कर रहे हैं। तो गौर हरि ने इस घटना के माध्यम से हम सबको बहुत बड़ी शिक्षा दी। गौर हरि उसके पास गए, उसने गीता हाथ में पकड़ी है, गीता हाथ में पकड़ के बेचारा रो रहा है। गौर भगवान पूछते हैं भाई क्यों तुम रो रहे हो, ये तुम्हारी हंसी कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। फिर मेरे गुरुजी ने कहा था बेटा तुम गीता पढ़ना, पर मैं तो अनपढ़ हूं इसलिए रो रहे हो? नहीं नहीं नहीं। फिर क्यों रो रहे हो? कहते मैं जब गीता हाथ में लेता हूं तो मैं भगवान श्री कृष्ण की फोटो देखता हूं, भगवान अपने भक्त और सखा के सारथी बन गए हैं, उसका रथ चला रहे हैं, भगवान कितने दयालु हैं इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो गौर भगवान जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, उन्होंने कहा तुम ही असली गीता के पढ़ने वाले हो, ये सब पाषंडी है, पाषंडी शब्द भगवान ने इस्तेमाल किया। अनपढ़ को कहा गीता का असली पढ़ने वाला, और जिन्हें गीता कंठस्थ उन्हें पाषंडी क्यों कहा गौर भगवान ने? क्योंकि गीता का मर्म क्या है, सार क्या है, भाव। उस अनपढ़ का भाव जागृत हो गया है, जिन्हें सारी गीता कंठस्थ है कोई भाव ही नहीं है उनका, भाव से शून्य है। नो डिवोशन नो इमोशन देन ओनली कमोशन, देन ओनली कमोशन देन देर इज नो प्रमोशन, देर विल बी नो प्रमोशन टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वन शुड रिमेंबर दिस नोशन। ये है आंदोलन, ज्यादा विद्वान बनने से भी अहंकार आ जाता है। जिसको अहंकार आ गया, श्री नरोत्तम ठाकुर कहते हैं अहंकारे मत होइया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है। किसी चीज का भी अहंकार है, अहंकार हमारे और भगवान के बीच में दीवार बन के खड़ा हो जाता है। अगर हमने भगवान को पाना है तो इस अहंकार को मिटाना है, इस अहंकार रूपी दीवार को गिराना है। ये अहंकार रूपी दीवार कैसे गिरेगी? केवल भक्ति के द्वारा, भगवान की भक्ति। प्रभुपाद जी जैसे वैष्णवों की कृपा से भगवान की निष्काम भक्ति, कोई कामना नहीं है। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख ना
करोड़ न हजार, हमें श्याम जी हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए, हमें लाख न करोड़ न हजार चाहिए, हमें श्याम जी ओ हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए।
हमें प्रभु कुछ नहीं चाहिए। इसी महाराष्ट्र में दो भक्त थे, पति पत्नी, उनका नाम था रांका और बांका। बोलो रांका और बांका की बड़े भक्त थे भगवान कृष्ण के महाराष्ट्र में। तो नारी जी ने एक दिन उनको देखा, भाई कितने भक्त है। नारी जी बड़े प्रभा, देखो भक्त को भक्त पहचान सकता है, जो भक्त नहीं है ना। अभी जैसे किसी की बुद्धि जो है, दर्शन करने आओ भाई, मना कौन कर रहा हूं, कम इन कम इन, वेलकम वेलकम, मो भी है बेम्बिमनियो। सो तो प्यारे बंधुओं माता हो, क्या कह रहा था मैं, रांका और बांका महाराष्ट्र के भक्तों की कथा सुनाने जा रहा था मैं। नारद जी ने देखा, नारद जी शुद्ध भक्त है, कितने भक्त हैं बेचारे, एक बार गरीब है, बड़ी गरीबी थी उनके, पेट कैसे पालते थे, जंगल से लकड़ियां चुननी वो बेचनी, जो थोड़ा मिले उससे गुजारा करना, लकड़ियां बेच करके। नारद जी पहुंच गए भगवान के पास, कृष्ण के पास। नारद जी कहीं भी जा सकते हैं, ये क्या प्रभु, ये क्या आपकी लीला है, क्या जो तो आपके अनन्य भक्त हैं उन्हें कुछ आप देते ही नहीं, और जो दुष्ट लोग हैं उनको सब कुछ दे देते हो आप। नारद जी को भगवान कहते हैं, देखो नारद ऐसी बात नहीं है, मैं अपने भक्तों को सब कुछ देना चाहता हूं, वो लेना नहीं चाहते। नारद मेरे भक्त, जो मेरे भक्त है ना, वो कुछ भी नहीं चाहते, मैं तो सोचता हूं उनको दूं कुछ। तो नारद जी कहते, प्रभु आपसे यही उम्मीद थी, हमको आपने यही कहना था, आप देते नहीं है भक्तों को। नारद जी को शिकायत है, भगवान कहते चलो तुम चाहते हो उनको देना ना, चलो आगे भगवान कृष्ण। बोलो हमारे प्यारे कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो भक्त वत्सल कृष्ण चंद्र भगवान की। आगे दूसरी तरफ से रांका और बांका आ रहे थे। रांका जी आगे आगे थे, बांका पत्नी पीछे पीछे। बांका ने घूंघट निकाला था, दोनों नव युवक थे, घूंघट निकाला था, ये हमारी संस्कृति है, डिस्टेंस, लोक लाज। पति पत्नी पब्लिकली साथ साथ नहीं चलते थे, दूर दूर चलते थे। आजकल दूर दूर क्या चलना, बांह में बांह डाल के चलते हैं, है? कितना बेशर्मी का प्रदर्शन करते हैं। और इसका भी ध्यान रखो भक्त, कहीं ऐसा देखते उनको एजुकेट करो, ये नर्क का द्वार है। स्कूटरों पर ये नव युवक नव युवतियां जाती हैं, क्या गंदगी का प्रदर्शन करती हैं, है? ये तो बेचारे नरकों में जाएंगे, और इनको देखकर किसी का मन अगर खराब हुआ वो भी पीछे पीछे वहीं जाएगा। इन लोगों का ये प्रयास, हम तो नरक में जाके सड़ेंगे, लेकिन सबको सड़ेंगे साथ में। इसका भी सुधार करो। मैं चाहता हूं कभी मेरी गवर्नमेंट आ जाए ना, मेरी गवर्नमेंट आएगी, आपके मुंह में घी शक्कर। मेरी गवर्नमेंट आ जाए, जब एक जब चलते हैं ना बेशर्मी का प्रदर्शन करते हैं, स्कूटर खड़ा है, दे मार भाई मार, दोनों की उसके दोनों की हड्डी पसली ये कर दे। एक बीच में कथा आ रही, मुझे पहली कथा भूल जाऊं तो याद दिलाना मेरे को। सुनो, वो एक जगह एक भंगड़ भंगड़ कटे हो गए, भंगे भंग पी थी उन्होंने, भंग भंग पिए, भंग समझते हो नहीं, भांग भांग भंग नहीं भांग, ये बड़ी प्रोनाउंसिएशन बड़ी जबरदस्त है इसकी, भंग नहीं भांग, हमारे भंग कहते हैं उधर इसको। तो भांग पी रखी थी, भांग के नशे में चूर थे, तो कहते हैं यार कोई काम करना चाहिए हमको। कहते काम क्या करेंगे? कहते यार खेत में गन्ने लगाएंगे, गन्ने भांग के नशे में बोल रहे हैं। कहते खेत के हम गन्ने लगाएंगे। कहते है दूसरा ना भांगड़ कहता है नशे वाला, हम तो हम गन्ने लगाएंगे और पड़ोसी आके चुप जाएंगे उनको। चुपड़ा समझते हो नहीं, मतलब उनको कहला इस तरह करो पहले पड़ोसियों के लिए बस लिए करो। और भंगड़ आ गए डंडे लेकर पड़ोसियों को मारने के, हो चुपो, कहते हो चुपो। वो कहते हुआ क्या? हो चुपो, के चुपो अभी गन्ने लगे नहीं, पैदा हुए नहीं, वो मार रहे हैं डंडे से उनको। इतना मारा उनकी हड्डी बदली एक कर दी भंगड़ों ने। इसी प्रकार जब मेरा राज आएगा ना, मेरे राज से तुम लोग बहुत खुश हो, है ना बच्चों? तुमने किसी ने गलती की तो तुम्हारी भी पिटाई कर दूंगा। मेरा राज आएगा, मैं इनकी बस डंडे से पिटाई करूंगा, मार मार दुर्गति कर दूंगा। तो अभी देखो एक शुद्ध भक्त है, पति पत्नी भक्त हैं, दूर दूर चल रहे हैं, लोग लाज बेशर्मी का प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छा नहीं है ये, हमारी संस्कृति नहीं है। पर इन दुष्टों ने, हमारे नेताओं ने, इन्होंने बेड़ा कर कर दिया हमारी संस्कृति का, इन्होंने बड़ी गंदगी फैला दी, गंद फैल गया सारे भारत में। देखो पशु पक्षियों को कोई शर्म नहीं होती, पशु हैं, आज दो टंग वाले पशु बन गए सारे हैं। जैसे कुत्ते को, कुतिया को कोई शर्म नहीं है, जानवर है, आज जैसे दो टंग वाले कुत्ते बन गए, कुतियाँ बन गई, अच्छा नहीं। और वैष्णवों का कर्तव्य है उसको रोकने का प्रयास करना, यहाँ भी मौका मिले प्रयास करो। मैं ये जो जीन्स पहनती हैं लड़कियाँ, शरीर का प्रदर्शन है, स्त्री का शरीर वैसे ही पुरुष के लिए आकर्षित है, अगर वह शरीर का प्रदर्शन करती है, टाइट कपड़े पहनती है और आकर्षित बन जाती है, ये नर्क का द्वार है। हमने अपनी भावना को एलिवेट करना है, कृष्ण कॉन्शियस बनना है। जब ऐसा होता है तुम्हारी भावना बिल्कुल दूषित हो जाती है। तो रांका भांका, भांका माता पीछे हैं, घूंघट निकाल रखा है, रांका जी आगे आगे चल रहे हैं। तो भगवान ने कहा, भगवान ने सोने की मोहरें रख दी, गोल्ड क्वाइंस। नारद तुम कहते मैं देता नहीं हूं ना, दे रहा हूं नहीं तेरे सामने। अभी रांका जी आगे आगे थे, उन्हें जब गोल्ड क्वाइंस देखे, सोचने लगे अगर ये हम ले जाएंगे तो कृष्ण चिंतन नहीं होगा, इनकी चिंता करनी पड़ेगी। गोल्ड क्वाइंस के ये भक्त हैं, शुद्ध भक्त, गोल्ड क्वाइंस की चिंता करनी पड़ेगी। पर मेरी पत्नी पीछे आ रही है, अगर उसने देख लिया, इनको कहेगी पति देव देखो भगवान ने गोल्ड क्वाइंस हमारे लिए भेजे हैं, ले चलो अच्छा घर ले लेंगे, हम तो गरीब हैं इतने अच्छी तरह रहेंगे। जब मट्टी डाल रहे थे, कहा ना आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तो रांका जी महाराज गोल्ड क्वाइंस पर मट्टी डाल रहे थे ताकि पत्नी देखे ना, लेकिन पत्नी ने देख लिया, देख लिया, सोचा अब ये कहेगी ले चलो। लेकिन पत्नी धन है सी माता, प्रणाम है सी माँ को। बांका माता क्या कहती हैं, पति देव ये क्या कर रहे हैं, अब मट्टी पर मट्टी डाल रहे हैं। वो उससे भी आगे थी, रांका को शर्म आई, सब कुछ मट्टी से तो निकल रहा है ना, गोल्ड क्वाइंस कहां से आ रहे हैं, मट्टी से तो आ रहे हैं। बड़ी शर्म आई, मैंने वो उनको नीचे सर नीचे हो गई, तो मेरे से भी एडवांस है, ले जाने की बात तो दूर, इसे देखा नहीं। अभी दोनों भगवान कृष्ण और नारद जी, एक बहुत बड़ा वृक्ष था उसके पीछे छिप करके ये देख रहे थे। भगवान ने कहा देखा नारद, तुम कहते मैं कोई देता नहीं, कहते प्रभु धन्य आप और धन्य आपके भक्त। जिसे भक्ति मिल जाती है ना, कहा कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, बोलो
भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी,
सकले रे अशांत,
कृष्ण भक्त निष्काम,
एता एव शांत, कृष्ण भक्त निष्काम। अभी क्या मांगोगे भाई, सब कुछ नश्वर है, यहां पर शाश्वत केवल भक्ति या कृष्ण की सेवा है और कुछ नहीं। बस हमें कृष्ण की सेवा से ही कृष्ण का प्रेम मिलेगा, हमें देखो हम कृष्ण के पार्ट, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, कृष्णा इज द होल एंड वी आर हिज पार्ट एंड पार्सल. द बिजनेस ऑफ ए पार्ट एंड पार्सल इज टू सर्व द होल. हमारा काम है मुरली मनोहर की सेवा करना है. मैंने एक भजन लिखा था, उसके एक दो लाइन मैं सुनाता हूं आपको, हिंदी में लिखा था भजन, साथ में नहीं है, पता लिखा शायद कहीं होगा, ढूंढ कर देखो. मुरली वाले तुझे मेरा लाखों प्रणाम, मुरली वाले लाखों प्रणाम, मेरे लाखों प्रणाम, लाखों मुरली वाले तुझे मेरे लाखों प्रणाम. मुरली तू है मेरा ठाकुर, तू है मेरा भगवान, तू है मेरा, तू है मेरा ठाकुर, तू है मेरा भगवान, तू है मेरा. मुरली वाले तुझे मेरे लाखों प्रणाम. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे बहुत बड़ा भजन. ऐसे एक बार गुरु गौरांग कृपा से मूड में आया तो लिखा था. तो भगवान कृष्ण जो हैं इनकी सेवा करना हमारा धर्म है, क्योंकि हम इन्हीं के हैं. वैसे इन्हीं के ममे वंशो जीव लोके जीव भूतासना, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम, मना षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृतिम स्थानी कृषि. अभी छह इंद्रिय मन के साथ हम बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, और भगवान की ये जो भौतिक प्रकृति है इस पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे हैं. ऐसा हमने नहीं करना, भगवान की सेवा करनी है. अगर सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा, अगर बदमाशी करेंगे तो फिर दंड मिलेगा. गुरु कृपा से बहुत कुछ है कहने के लिए, और मैं आगे नहीं बढ़ूंगा. आप लोगों ने तो ब्रेकफास्ट ले ली है, ले लिए सबने, नहीं नहीं बाकियों ने ली है, दो जनों ने नहीं ली और सरला आ रहे हैं, बाकी ने कहते ली है, ली है ब्रेकफास्ट, नहीं यहाँ नहीं होती ब्रेकफास्ट सुबह है क्या, आज व्रत है क्या, कहा सुना नहीं है? क्या अच्छा ब्रंच होगा, ब्रंच ठीक है, तो मेरा भी ब्रंच होगा, मुझे भूख लगी है. भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला. हाँ बोलिए श्री केशव जी महाराज की जय हो. श्री केशव जी बोलो, श्री केशव माइक दो यार श्री केशव जी को.
हरे कृष्ण महाराज जी.
हरे कृष्ण जी.
महाराज आज श्रीपाद रामानुजाचार्य का तिरुभाव दिन है. हाँ? तो आपने बहुत सुंदर वर्णन किया समाधि पुस्तक से.
हाँ जी.
आप महाराज वैसे तो उत्तर भारत से बिलोंग करते हैं.
हाँ?
तो सुंदर हिंदी और भजन सब बहुत बोलते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि हम उत्तर भारत.
हाँ?
उत्तर भारत में कुछ ऐसे संत हैं जो संप्रदाय के हैं, जो माथे पे मोटे मोटे तिलक लगाते हैं और रामानंदी साधु कहलाते हैं. तो ये जो रामानंदी साधु और रामानुजाचार्य के संप्रदाय में क्या,
मेरे ख्याल में कोई भेद नहीं है, एक ही है.
अच्छा.
सेम
और
नो डिफरेंस,
उन्हीं का ही परंपरा है आगे. श्रीपाद रामानुजाचार्य का ही परंपरा आगे उत्तर भारत में रामानंदी साधु कहलाते होंगे.
हाँ रामानुज सेम है, नो डिफरेंस। एक बात मैं रांका बांका की भूल गया, सुना देता हूं आपको। इतने विनम्र थे रांका बांका, शुद्ध भक्त थे। तो ये जंगल में लकड़ियां चुनने जाते, जब इन्होंने सोने के गोल्ड क्वाइन नहीं उठाए, सोने की मोरे नहीं उठाई, तो कृष्ण भगवान कहते अच्छा देखो जहां से लकड़ी इकट्ठी करते हैं ना, चलो आज हम इनकी मदद करते हैं। कृष्ण भगवान और नारद जी वहां आ गए, उन लकड़ियों का गठे बना दिए वहां पर, वो ले जाएंगे उठाकर। जब रांका बांका वहां आए, कहते कि हमसे आके पहले ही आकर यहाँ लकड़ियां चुन गया, उन्होंने वो गठे भी नहीं उठाए जो भगवान ने बना के रखे उनके लिए, वो भी नहीं उठाए। अभी भगवान नारद जी कहते देखा जो भक्त है ना वो टोटली सेटिस्फाइड है, उसे कोई भौतिक इच्छा नहीं है, बड़ा विनम्र है। महाराष्ट्र में भी बड़े बड़े अच्छे भक्त हुए। तो रामानुज के एक शिष्य हुए पीपाजी महाराज। पीपाजी जो थे वो राजा थे, राजा थे उन राजा थे, तो राजा आगे दीक्षा लेने के लिए आप पीपाजी जो थे, ये एक माता है देवी नवदुर्गा, कौन सी देवी है जिसकी सवारी गधे की है, कौन सी देवी है वो, कालरात्रि, हाँ कालरात्रि देवी के ये उपासक थे। तो एक दिन माता प्रकट हो गई, कहते बोलो क्या चाहिए तुम्हें, कि माता मुझे एक बहुत बढ़िया अच्छा घोड़ा दो सवारी के लिए। माता कहती है मैं तो खुद खोते की सवारी भरूँ, मैं गधे की सवारी पर हूँ, तेरे को बढ़िया घोड़ा कहाँ से दे दूँ। देखो तुम ऐसा रामानुजाचार्य के पास, जब माता ने शिक्षा दी उनसे दीक्षा लो तो वहां तुम्हें सब कुछ मिलेगा भगवान की कृपा से, राम कृपा से। तो पीपाजी महाराज आगे रामानुजाचार्य के पास, तो भक्तों ने सूचित किया कि गुरुदेव वो राजा आया है पीपाजी महाराज, जाओ भाग जाओ यहां से। गुरु कहते हैं भाग जाओ यहां से। तो पीपाजी महाराज को बुरा नहीं लगता है, मिलने से पहले ही गुरुदेव मेरा अहंकार खत्म कर रहे हैं। ओके जाकर उन्हें धोती कुर्ता पहना, अकेले आ गए। कहते महाराज अभी अकेले आए हैं, धोती कुर्ता पहन के आए हैं, और उसको बोलो जाओ कुंगे में छलांग लगा। तो पीपाजी महाराज चले गए झट कुंगे में छलांग लगाने के लिए। कुंगे में जब छलांग लगाने के लिए गए तो रामानुजाचार्य ने अपने शिष्य वहां खड़े करके रखे थे, उनको पकड़ लिया, छलांग नहीं लगाने दी। कहते तू अभी दीक्षा लेने के योग्य, परीक्षा में पास हो गए ना। तो आए घर में, घर में जब आए तो बहुत सारी रानियां थी उनकी, 1500-1516 रानियां थी, सब कहने लगी हम साथ जाएंगे साथ। बोला जो मेरे, मैं किसी को साथ नहीं ले जाना चाहता, लेकिन हम जाएंगे आपके साथ। कहते फिर मेरे साथ वो जाएगी जो 16 श्रृंगार सब छोड़ के। जब ये कहा श्रृंगार छोड़ने के लिए, सारी रानियां भाग गईं। एक रानी थी सीता सहचरी छोटी, उसे सब 16 श्रृंगार उतारा और सफेद धोती पहनी, कह तू मेरे साथ जाने के योग्य है। तो दोनों ये इतने भक्त बने, इनकी इतनी कथाएं हैं। एक दो कथा मैं इनकी सुना देता हूँ आपको। भक्त बड़े महान होते हैं। इन्होंने सुन रखा था कि भगवान कृष्ण ने अपनी द्वारका को समुद्र में डुबो दिया है, दोनों समुद्र में कूद गए, भगवान की द्वारका तक कूद गए। तो चले अंतर द्वारका, भगवान की देखी सारी। 7 दिन तक ये समुद्र के अंदर रहे, समुद्र के अंदर रहे, भगवान की लीला देखी, सब द्वारका लीला देखी। 7 दिन के बाद अभी भगवान कहते हैं अब जाओ। कहते प्रभु ये सब छोड़ के उधर क्या करना जाकर। कि देखो अगर आप नहीं जाओगे तो लोगों का मेरे में जो भाव है वो समाप्त हो जाएगा, लोगों की मेरे में श्रद्धा खत्म हो जाएगी, कि मेरे नाम से आप समुद्र में कूदे और आपकी मृत्यु हो गई, वापस नहीं गए। अच्छा प्रभु वापस आ गए। समुद्र से बाहर निकले दोनों पति पत्नी, पीपाजी और सीता सहचरी, सूखे कपड़े, को गीले कपड़े नहीं। तो ये भी इन्होंने द्वारका लीला देखी थी। और फिर ये एक चीदा जी महाराज हुए हैं, बड़े भक्त भगवान के, उनके पास एक ये उन्होंने सुन रखा था नाम। उनके भी इतनी गरीबी थी, तो अतिथि घर में आ गए, तो पत्नी कहती है तो पतिदेव साड़ी, एक साड़ी पहनी हुई है, उतना कुछ नहीं है। इसको बेच करके संतों की सेवा करो, अतिथियों की सेवा करो। तो वो साड़ी बेची जाकर आया, उन्होंने प्रसाद पाया। तो अब पाना लगे थे तो सीता सहचरी कहती हैं चीदा जी महाराज को, चीदा जी महाराज जो थे, बोला आप पत्नी को भी आप बुला लो। कि नहीं नहीं मना कर रहे हैं। आकर सीता चरी उठ के अंदर गई तो वस्त्रहीन, भक्त बेचारे कैसे होते, उन्होंने अपना वस्त्र बेच करके अतिथि सत्कार किया। सीता चैतरी इतनी प्रभावित हुई, इतने महान है ये, तुमने बोला कि तन क्या है, हमने कई जन्म लिए, कई बार मरे, कई बार ये तन नंगा रहा, कई बार इसको ढका। अगर संतों की सेवा के लिए हम अगर वस्त्रहीन भी हो गए तो सीता सहचरी पति को कहती है बड़े महान वैष्णव हैं दोनों, सीता जी और उनकी धर्म पत्नी। वो कहती है सीता सहचरी वो रानी थी, कहते मैं भी अपने तन को बेचूंगी इनकी सेवा करने के लिए। तो जाके जाके बाजार में बैठ गए, वो बैठ गई तो वैश्या बन गई सीता सहचरी। कहती ये पति को भेड़वा जो वैश्यों के साथ होते हैं ना, जो वैश्यों को सप्लाई करते हैं, तो बैठ गए सीधा अपना पीपा जी महाराज। ये तो किसने दिख रहे हो, ये तो बहुत बड़े भक्त हैं, ये तो द्वारका लीला के दर्शन करके आए हैं, दुनिया भर का सामान उनके पास आ गया। और सब ने सीधा जी महाराज को दिया, कहते ये आप इसे अपना गुजारा करो। तो पीपा जी महाराज के जीवन की बहुत सारी कथाएं। एक बार वो एक जंगल के रास्ते से जा रहे थे, लोगों ने कहा कि इधर नहीं जाइए आप। कहते क्यों, इधर एक मनुष्यों को खाने वाला शेर है, वो आदमियों को खा जाता है। पीपा जी महाराज उधर से गए, शेर आ गया, उधर ही रुक खड़े रहो। शेर खड़ा हो गया, पूछ हिलाने लगा, आज के बाद तू किसी को नहीं खाएगा। पूछ ला वो वैष्णव बना दिया शेर को, दीक्षा दी और शेर वैष्णव बन गया, किसी मनुष्य का मांस नहीं खाया फिर उसने। तो भक्त अभी देखो रांका और भांका कितने भी नम्रता है, लकड़ी का गट्ठा भगवान ने बनाया वो भी उन्होंने नहीं उठाया। इनके जीवन की बहुत सारी दिव्य कथाएं हैं। तो वैष्णव धर्म लुप्त हो रहा था, भक्ति लुप्त हो रही थी, बड़ा आभार गौ निताय का, पंचतत्व का और राधा कृष्ण का, जिन्होंने अपने शुद्ध भक्त को भेज करके पुनः इस भक्ति की स्थापना कर दी। जैसे मैं कह रहा था फिर कहता हूं, प्रभुपद कहते थे इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दैट द होल वर्ल्ड कैन बिकम डिवोटी, इवन इफ फ्यू पीपल्स विल बिकम डिवोटी देन द वर्ल्ड कैन बी सेव्ड। अगर कुछ लोग भी भक्त बन गए ना तो दुनिया बचाई जा सकती है, सब भक्त नहीं बन सकते। प्रभुपद ने यह भी कहा, आई डोंट वॉन्ट मिलियंस ऑफ स्टार्स, आई वॉन्ट वन मून, मुझे एक चंद्रमा चाहिए। तो ये भक्ति पथ से ही भगवान मिलेंगे। गीता में भगवान ने ज्ञान योग, ध्यान योग, राय योग, हठ योग, संख योग, सारी योगों का वर्णन किया और भगवान ने कहा, भक्त्या माम अभिजान आती यावन जस्यास्मी तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। आई कैन बी नोन एज आई एम ओनली बाई भक्ति, बाई डिवोशन, और कोई रास्ता नहीं। तो प्रभुपाद जी ने भक्ति दी है, कृपा करके इसको बनाए रखो, सारे भगवान की निष्काम सेवा करो, कुछ नहीं चाहिए बदले में है। अगर देखो ब्राह्मण जो है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये किसी की नौकरी नहीं करते। अगर पैसे लेके हमने भगवान की सेवा की, हम ना ब्राह्मण है ना क्षत्रिय है ना वैश्य, हम शूद्र की संज्ञा में आ जाते हैं। नौकरी शूद्र करता है, वैश्य भी नौकरी नहीं करता, क्षत्रिय भी नहीं करता और ब्राह्मण तो करता ही नहीं, पठन पाठन जजन जाजन। तो हम लोग भक्त बने। कई बार बात आती है सिक्योरिटी की, भाई सिक्योरिटी का क्या होगा है हमारी, तो जिसे भगवान पे भरोसा नहीं है वो फिर जाके काम काज करे, अपनी सिक्योरिटी बनाए। प्रभुपाद ने बिल्कुल मना किया है कि ये जो भक्ति का इंस्टीट्यूशन है इसको हम एक शूद्रों का इंस्टीट्यूशन नहीं बनाए, साफ शब्द में कहा प्रभुपाद ने। ग्रीन डायरी दे मेरी। एक प्रभुपाद का कोट मैं पढ़ूंगा, आप कृपा करके सब इसका पालन करो और प्रभुपाद कृपा से हम एक रिमोट एरिया में इसका पालन करने का प्रयास कर रहे हैं और हमें कोई समस्या नहीं है, हमें कोई समस्या नहीं है। प्रभुपाद कृपा से प्रभुपाद सब कुछ दे रहे हैं। हमारे पास एक गुरुकुल है, प्रभुपाद कृपा से गुरुकुल में बच्चों को फ्री शिक्षा दी जा रही है, फ्री बोर्डिंग लॉजिंग, उसमें 100 के करीब बच्चे हैं अभी। ये टीके जी तमाल कृष्ण महाराज की डायरी में से है, अप्रैल 28 पेज नंबर 16, जिसने देखना डायरी में देख लेना, नोट कर लेना। शीला प्रभुपाद स्पोक वेरी स्ट्रांगली अबाउट अवर सोसाइटी नॉट एग्जिस्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। दिस वॉज इन कनेक्शन विद पेइंग सैलरीज टू डिवोटीज एंड सप्लाइंग स्पेशल फैसिलिटीज फॉर क्रिस्तास। शीला प्रभुपाद स्ट्रेस दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस मेंट वैराग्य, वन हु वॉज नॉट इंटरेस्टेड येट इन डेवलपिंग वैराग्य कुड नॉट बी मेंटेन बाई द सोसाइटी, अदरवाइज द होल इंस्टीट्यूशन वुड बिकम वीकन। इफ क्रिस्तास वर रेंडरिंग असेंशियल सर्विस द टेम्पल कुड प्रोवाइड लिविंग फैसिलिटीज बट दे हैड टू वर्क वॉलंटरली नॉट फॉर सैलरीज। सैलरीज लेना मतलब शूद्र की संज्ञा में आना है। तो ये मैंने बताया आपको, एक अनपढ़ गंवार को भी जिसका भाव जागृत हुआ है, भगवान कहते हैं, गौर भगवान कहते हैं कि तुम ही गीता के असली पढ़ने वाले हो और बाकी सब पाषंडी हैं जिन्हें गीता सारी कंठस्थ है। तो कलयुग में भाव और भक्ति यही प्रभुपाद की देन है, इसको मेंटेन करो, इसका प्रचार प्रसार करो, खुद पालन करो, दूसरों को करवाओ, तभी हमारा भारत बचेगा, तभी हम बचेंगे, नहीं तो नहीं बच पाएंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, नमा ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन एनीबॉडी हैज अदर देन श्री केशव? बाहर अंदर वाले को।
महाराज जी, हम आपके तस्वीर देखते हैं,
हाँ,
पुस्तक वितरण उसमें कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी को भगवद गीता दिए, तो राजनेताओं को आप प्रचार करते समय क्या बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं?
मैंने जो प्रधानमंत्री जी को बोला वो बता देता हूँ। हैं, मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि को संजय है यहाँ पर? नहीं, कहाँ है? हाँ, इसको दो जरा माइक, ये मेरे साथ था, मैंने क्या बोला इसी से सुनो जरा।
हरे कृष्ण जी, जिस समय 2012 में महाराज जी की भेंट हुई मोदी जी से, तो महाराज जी ने देश की जो जैसी परिस्थितियां बनी हैं उसके बारे में चिंता व्यक्त की और कहा कोई भी पार्टी इसके लिए कार्य नहीं कर रही है, आपने गुजरात के लिए बहुत अच्छा किया है, ऐसा ही देश के लिए भी आप करें। तो मोदी जी ने कहा, स्वामी जी आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं ये CM के इलेक्शन जो गुजरात के आ रहे हैं ये इलेक्शन मैं जीत जाऊं 3-4 महीने में, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। महाराज जी ने कहा कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप भारत के प्रधानमंत्री बने। महाराज जी ने उनसे प्रभुपाद जी का प्रणामी मंत्र, पंचतत्व मंत्र और हरे कृष्ण मंत्र तीन बार बुलवाया तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बड़े आदर के साथ मंत्रों का उच्चारण किया। तो महाराज जी ने कहा कि आप कम से कम 10 मिनट इस महामंत्र का नियमित जप करें। तो मोदी जी ने कहा जरूर करूंगा, जरूर करूंगा, दो बार बोला।
पता लगा मैं क्या कहता हूं पॉलिटिशियन को? आपके प्रश्न का उत्तर मिला नहीं?
और जैसे ही 16 तारीख को उनकी गवर्नमेंट आई, जीत गए वो, तो 3 दिन बाद ही महाराज जी को बहुत सुंदर शब्दों में पत्र भेजा उन्होंने और उसमें आभार व्यक्त किया, धन्यवाद किया और साथ में ये भी कहा कि जिस तरह से ये बीजेपी और एनडीए की ये केवल जीत नहीं, ये आपकी भी जीत है और हम आशा करते हैं कि आपसे साझेदारी की और मार्गदर्शन आप देते रहें उसमें। उसका पूरा पत्र है।
और कोई प्रश्न किसी को? अंदर बाहर वाले को? बाहर वाले को कोई प्रश्न? हाँ, बाहर वाला का प्रश्न कर रहा है, ना बाहर है ना अंदर है, ये बीच में है, ये दिल्ली के ऊपर है।
हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद, बहुत सुंदर क्लास दिया आपने। उसमें आप बता रहे थे महाराज,
आपका भी धन्यवाद, आपने बड़े सुंदर ढंग से सुना उसको
महाराज। उस क्लास में आप बता रहे थे कि है? क्लास में आप बता रहे थे कि हमें भक्ति जो है अन्य अभिलाषिता शून्यम इस भावना से करना चाहिए। हम वही चीज एक्चुअली हम भागवत में पढ़ते हैं कि देवता गण जो हैं वो जो भक्ति करते हैं उसमें कुछ ना कुछ अभिलाषा रहता है उनका। तो ऐसा मुझे दो प्रश्न हैं, एक है कि
पहले एक करो फिर दूसरा बात।
जी जी, इसी के अंतर्गत ये है कि जो देवतागण हैं वो इतने सालों मतलब भगवान की भक्ति में लगे रहने के बावजूद उनमें क्यों अभिलाषा रहता है भौतिक, और वही हम जैसे 1 या 2 साल हम इस्कॉन में आते हैं, हमारे हम भक्तों को देखते हैं इस्कॉन में 2 साल 3 साल में आते हैं, उनकी अभिलाषाएँ बहुत सारी भौतिक अभिलाषाएँ कम हो जाती हैं, तो ऐसा होने का कारण मैं जानना चाहता था।
देखो ऐसा है कि देव शरीर जो है ना उसमें सुख भोग बहुत हैं, आयु लंबी है, देव शरीर में भक्ति नहीं हो सकती, वहां भोगों को भोगा जा सकता है। 15वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि क्षिणे पुणे मृत लोके विशंति, क्या श्लोक है किसको बताया? पहले पहले है ते तुम भक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षिणे पुणे मृत लोके विशंति। तो पुण्य कर्म करने से हम लोग स्वर्ग लोक में जाते हैं, देवता लोक में बनते हैं, जब पुण्य समाप्त हो जाए मृत्यु लोक में वापस आना पड़ता है फिर, तो वहां पर उनकी इच्छाएं बनी रहती हैं। यहां पर ये जो मृत्यु लोक है भक्ति के लिए यही एक ठीक जगह है, भक्ति हम यही कर सकते हैं, स्वर्ग लोक में भक्ति नहीं होती, वहां पर अपने कर्मों का भोगों को भोग सकते हैं, भक्ति नहीं। समझाइए आपको, आपके दोनों प्रश्न का उत्तर मिला नहीं?
और महाराज जैसे हम हैं मतलब या फिर कोई नए भक्त आते हैं इस्कॉन में तो उनका भौतिक इच्छाएं इतनी जल्दी दूर कैसे हो जाती हैं?
दूर कैसे हो जाती हैं? ये भक्ति माता का प्रभाव है, हरि नाम का प्रभाव है, प्रभुपाद की कृपा है, गौरताई की कृपा है। वैसे पहला भक्त मिला इसकी इतनी जल्दी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, प्राय में यही मिलता है, इच्छा नहीं खत्म हो रही हमारी, ये बड़ा विशेष भक्त है, तेरी खत्म हुई है, बाकियों की इच्छाएं तो बढ़ती जा रही हैं। और कोई प्रश्न किसी को? टू आस्क ए क्वेश्चन इज ए साइन ऑफ इंटेलिजेंस। कोई नहीं, हाँ बोलिए। हैं हैं हाँ,
परपट में कि गुड बिहेवियर and gratitude for Krishna and good association gives all opulence. तो किस तरह का ऑपुलेंस होता है?
ये उधर ही जाके देखना पड़ेगा. क्वेश्चन जो है माताजी सब्जेक्ट मैटर पे होना चाहिए. आपने उधर ये डिस्कस नहीं किया.
नहीं नहीं वो ना.
हाँ नहीं नहीं. फिर तो ऑपुलेंस भी कई किस्म की होती हैं, पर ये लंबा विषय है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे अभी. अभी अभी के विषय पर, अभी के सब्जेक्ट पर कोई पूछना चाहता हो तो बोलिए. कोई प्रश्न नहीं. ठीक है.
हरे कृष्ण महाराज जी, बहुत धन्यवाद.
हरे कृष्ण.
आपने जो बताया था, हम भी बाहर जाते हैं तो ये सारे सीन देखते रहते हैं. जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि वो अजय मिल ने एक ही सीन
देखा था.
तो हमारे लिए भी वो देख के स्पेशली मेरे बारे में होता है कि मैं प्रभावित हो जाता हूँ. तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए?
ऐसे सिचुएशन में तुम्हें हरि नाम करना चाहिए, नाम जपना चाहिए, भगवान का सहारा लो और देखो मत. क्योंकि ये भाई ये भी मूर्ख लोग हैं बेचारे, ये विषय कीट हैं, ये नर्क में जाने की तैयारी कर रहे हैं. प्रयास करो, उनको देखो मत. मन मलिन है, मन उधर तरफ उस तरफ खींचेगा. कोशिश करो नहीं देखने की, समझाए नहीं. और नाम का सहारा, विशेष करके नित्यानंद भगवान से प्रार्थना करो. आर कबे निताई चांद करुणा हईवे, संसार वासना मोरे कबे तुच्छ हईवे. व्हेन विल बी लॉर्ड नित्यानंदा बी मर्सिबल टुवर्ड्स मी एंड फ्री मी फ्रॉम ऑल मटेरियल डिजायर फॉर सेंस एंजॉयमेंट. इनसे प्रार्थना करो, जो तेरी हालत खराब है ठीक होना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे. बहुत ज्यादा खराब तो नहीं तेरी हालत है?
भक्तों की कृपा से अभी तो अच्छा है.
नहीं, पहले तूने कहा था मेरी बड़ी प्रभावित हो जाता हूं मैं, तो अब एक मिनट में अच्छा हो गया तू? अभी तूने कहा कि मैं मारे प्रभावित हो जाता हूं, एक मिनट में अच्छाई कैसे आ गई तेरे में?
महाराज जब भक्तों के संग में रहते हैं तो वो प्रभाव नहीं रहता है, लेकिन बाहर जाने के बाद वो मलिन मेरे
तो मलिन ये बोलना पड़े कि भक्तों के साथ थोड़ा कटाया, बाहर जाके फिर वही हालत हो जाती है. तो अभी बाहर जाता क्यों? भक्तों के संग ही रहे ना. बाहर जाना नहीं, भक्तों के संग रहना, ये महाप्रभु ने कहा है. क्यों अपनी बाहर जाके हालत खराब करता अपनी? और कोई प्रश्न किसी को? हाँ बोलो. हरे कृष्णा जी, इसको माइक दो भाई.
हरे कृष्णा महाराज जी.
हरे कृष्णा जी.
अभी के क्लास का सवाल नहीं है, मेरा सवाल ये है कि मतलब एक भक्त को गुरु की पहचान कैसे होती है? मतलब अब भक्त,
हाँ इसका उत्तर प्रभुपाद जी ने दिया है. प्रभुपाद ने कहा है, इफ यू वांट ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, फर्स्ट यू शुड बिकम बोनाफाइड डिसाइपल. अगर तुम सिंसियर भक्ति में बनोगे तो भगवान तुम्हें गाइड करेंगे.
महाराज जी, पर एक शिष्य का कैसे, वो उसको कौन सा क्वालिफिकेशन है कि वो गुरु को ढूंढ सकता है या गुरु?
सिंसियर बनना है, भक्त बनना है, इच्छा जागृत करनी है सदगुरु की, भगवान मिला देंगे. जब देखो ना, अभी जैसे बहुत सारे ऐसे हैं दीक्षा दे देते हैं, इस कान की बात नहीं बाहर की बात कर रहे हैं. तो एक भक्त ने प्रश्न पूछा प्रभुपाद को, प्रभुपाद हाउ कम दिस चीटर्स मेक सो मेनी डिसाइपल्स? तो प्रभुपाद कहते हैं, पीपल वांट्स टू बी चीटेड, दे गेट्स द चीटर. वो ऐसे ही हैं बेचारे, ऐसे ही चाहते हैं, चीप गुरु चाहते हैं तो उनको चीप गुरु मिल जाते हैं. हमें सिंसियर बनना. ठीक है, दो प्रश्न बार भी शुरू हो गए. प्रश्न ये था या अभी भी है?
हाँ महाराज, आपने प्रवचन में बता रहे थे कि हमें वैष्णव बनना चाहिए, तो वैष्णव जो भी पापी लोग हैं उनको बचाने की इच्छा रहता है उसको, और उनको प्रचार करके उनको भक्त बनाने की कोशिश करता है। और इसी में हम उदाहरण देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जगह मदाय को भी भक्त बना दिए। तो अभी हम देखते हैं कि आजकल बहुत टेररिज्म बहुत बढ़ गया है, जैसे पेशावर में 150 बच्चों को मार दिए और अलग अलग जगह टेररिस्ट बहुत लोगों को मार रहे हैं। तो क्या ये लोग ही जगह मदाय से भी पापी है, या इनको भी बचा सकते हैं हम? हमारे तरफ से हम क्या कर सकते हैं?
पहले आप अपने आप को बचाओ। देखो ये जो पेशावर में टेररिज्म 150 बच्चे मारे, इन लोगों ने तो टेररिज्म हिंदुस्तान में फैलाया, उसका रिएक्शन आई है उनके लिए। इन्होंने तो फैलाया ये टेररिज्म भारत में। अभी वो तालिबान वाले कहते हैं ये पाकिस्तानी, हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में टेररिज्म फैलाओ। इनकी रिएक्शन है, कर्मों का रिएक्शन है। उनको तू क्या बचाएगा? अभी छोड़ दे पेशावर, कहाँ पहुंच गया तू? तू यहीं रह और अपना अपना बचाव कर तू, ठीक है? हाँ, कहता नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करेगा, ऐसे करना है, नहीं क्या करेगा तेरे? हाँ, उसको दे माइक, उधर एक और प्रश्न।
महाराज, समटाइम्स व्हाइल चैंटिंग,
बोलो बोलो।
हरे कृष्णा महाराज।
हरे कृष्णा।
चैंटिंग करने का टाइम हम, व्हाइल चैंटिंग समटाइम्स वी ओपन आवर आईज, sometimes we close the eyes, so which is the best Maharaj?
Like both are the best. अरे close eye ध्यान से भी करो, खोला भी कर सकते हो, no hard and fast rules। मतलब अगर तुम्हारी आंखें बंद करके ध्यान लग रहा है तभी ठीक है, खुले लग रहा है, you have to hear the sound vibrations, उसको सुनो, जैसे भी सुन सकते हो, आंखें खोल के आंखें बंद करके जैसे भी। महाप्रभु ने तो क्या कहा, उठी थे बैसी थे, खाई थे सुई थे, यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही, सर्व सिद्धि है। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे भी नाम लो, देश काल नियम नहीं है, सारी सिद्धियां होंगी। समझाई? और कोई प्रश्न जाग रहा है किसी का? नहीं, ठीक है। हरे कृष्ण।